तो सवाल था कि जी ये यकीन का क्या रोल है, इरादे का क्या रोल है। ठीक है, हम इस पे बात कर रहे थे। देखें, छोटे से छोटा काम भी बगैर इरादे के हो सकता है। आप इसी से अंदाजा कर लीजिए कि बड़े कामों के लिए भी तो यही फार्मूला है ना। ये बात कही गई है इसमें कि जब आप बड़ा इरादा करेंगे तो उसमें आपको तकरार करना होगी। अब होता क्या है कि जहां पे हम नाकाम होते हैं वहां पे क्यों नाकाम होते हैं? इरादे में दम नहीं होता। इरादे में दम ना होने की वजह से वो इरादा मुकम्मल नहीं होता। कोई चीज हमें बहकाती है, हम इरादा तर्क कर देते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कानून एक ही है, छोटे काम के लिए भी बड़े काम के लिए भी, यानी इरादा करना और इरादे में दम होना। इरादे में दम तब आता है जब उसकी तकरार की जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, जहन में ताकत हो। अब आप गौर करें कि एक बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा और सारी उम्र वो एड़ियां रगड़ता रहता है, डॉक्टर नहीं बन पाता। दूसरा बच्चा कहता है, वो भी गरीब घर से होता है, उसके अम्मा अब्बा के पास फीस के पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो इरादा करता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, दिन रात मेहनत करता है और एक दिन वो अच्छे नंबरों से मैट्रिक करता है, अच्छे नंबरों से एफएससी करता है, स्कॉलरशिप लेता है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसी मिसालें हैं ना आपकी नजर में? इसी तरह जब हम कायनाती निजाम पे गौर करते हैं तो वहां पे भी सारे काम यकीन के बगैर नहीं होते। यकीन का मतलब है कि सर्टिट्यूड, आगे बढ़ना, और वो तब होता है जब इरादा हो, इरादे में दम हो। इरादे में दम होगा तो क्या होगा? आप गैब में छुपी हुई चीजों को मजहर बना सकेंगे, क्योंकि जिस चीज का वजूद गैब में नहीं है वो मजहर नहीं बन सकती। वो इरशादात में हजरत कलंदर बाबौलिया ने यही बात वाजे की है कि सारी तस्वीरें पानी के अंदर मौजूद हैं। जब इरादे का कंकर पानी की सतह से टकराएगा और बशर्ते पानी की वसत इतनी हो कि उसमें लहर पैदा हो सके, तो वो उसके अंदर छुपी हुई वो तस्वीर जो आप चाहते हैं वो मजहर बन सकती है। ये बात उन्होंने इरशाद फरमाई और ये बहुत कीमती कानून है। इंसान अपनी जिंदगी की जो मर्जी तस्वीर बनाए बना सकता है। अगर वो खुशहाली की, खुशी की तस्वीर बनाएगा तो खुशी और खुशहाली की तस्वीर मजहर बनेगी उसके इरादे के जोर पे। इरादे में दम होना चाहिए। दम लाने के लिए इरादे की तकरार करनी पड़ती है। उसमें से एक जुमला ये भी है ना कि बाज लोग एक बात का इरादा करते हैं, वो 1,25,000 दफा दोहराए जाने वाले इरादे से ज्यादा होती है उसकी ताकत, और बाज लोग एक इरादे को 1,25,000 बार दोहराते हैं और उसमें इतनी भी जान नहीं पैदा होती कि वो एक दफा दोहराया जाने वाला इरादे की तरह काम कर सके। क्या मतलब हुआ इसका? असल खेल हुआ जहन की ताकत का, आपकी डिटर्मिनेशन का, और आपके इरादे में। उन्होंने ये भी बताया कि अल्फाज की तकरार को इरादा नहीं कहते, आपको उसकी मानवी तस्वीर को मजहर बनाना है तो उसकी मानवी तस्वीर देखेंगे ना। जैसे मैंने लफ्ज डॉक्टर कहा तो अगर बच्चे को एहसास ही ना हो कि डॉक्टर होता क्या है तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, वो पहले उसकी जाहिरी शक्ल, यानी गाउन पहना हुआ है तो स्टेथो गले में डाला हुआ है और वो एक अस्पताल में चल रहा है, साथ में उसके कुलीग्स हैं या जूनियर डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, वो ये तस्वीरें देखता है शुरू में। फिर रफ्ता रफ्ता उसे समझ आता है कि डॉक्टर में ये क्वालिटीज होती हैं, ये एबिलिटीज होती हैं, वो दूसरों का इलाज कर सकता है, उसको नॉलेज होता है, एनाटॉमी का पूरा पता होता है, हाइजीन का पूरा पता होता है, फिजियोलॉजी का पूरा पता होता है, फिर वो मेडिकेशन का पूरा ट्रीटमेंट का सिस्टम जानता है। तो मानवीयत हम इरादा करते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ अल्फाज की तकरार करने से, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, तो ये अमीर होना कोई अमीर तकरार नहीं है। यही हशर हम करते हैं अल्लाह के नामों के साथ, जब हम उनकी तकरार तो कर रहे हैं, विर्द कर रहे हैं, लेकिन उनके मानी और मफाहीम हमारे जहन से नहीं गुजर रहे, तो लिहाजा वो सिफात भी हमारे अंदर उजागर नहीं हो रही। बात वाज़े हो गई?
बिल्कुल सर, बिल्कुल वाज़े हो गई सर, बहुत जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सर।
वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ने कुछ कहा ना, लास्ट रूम को अलग अलग का वही कहा जाता है, तो सर जो चीज़ें हम शौरी तौर पे जो ये सारी देखते हैं उसको हम अल्लाह ताला का जहन क्यों नहीं कहते, या आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करते?
जी मैं समझ गया। देखिए बात यह है कि जहन के दो रुख हैं। पहला जुमला जो दुरुस्त होना है वो ये कि जहन के दो रुख हैं। एक रुख जो आपके सामने मौजूद चीजों को हाजर हजूर में देखता है उसको हम शऊर कहते हैं, और वो जहन का हिस्सा जो गैब में चीजों को देखता है, जो चीजों को जो उसके सामने हाजिर नहीं है उनको भी देखता है, उसको हम लाशऊर कह देते हैं। ये बात आपको वाजे होनी चाहिए। देखें जहन दोनों सूरतों में एक ही है, चाहे वो बेदारी में काम करे, चाहे वो ख्वाब में काम करे, चाहे वो मरने के बाद काम करे, चाहे वो जिंदगी में काम करे, चाहे मरने के बाद काम करे, यानी जहन तो वही रहेगा। इसको रूहानी जबान में नस्मा कहा गया। अगर ये नस्मा को आप जहन को इस तरह समझे कि ये एक वजूद रखता है, ये पूरा वजूद है जो बेदारी में भी काम कर रहा है, जब वो बेदारी में काम करता है तो हम उसको शऊर कहते हैं, और जब वो ख्वाब के हवास में काम कर रहा है तो हम उसे लाशऊर कह रहे हैं। अब ये लाशऊर को समझने के लिए हजूर कलंदर बाब औलिया ने बड़ी वजाहत और बलागत से ये बात वाजे की, और हजूर मुर्शिदे करीम ने उसकी बड़ी तफसील से, बड़ी सराहत से शरह फरमाई कि शऊर के दर्जे हैं। उन्होंने क्या कहा कि शऊर का एक दर्जा इनफरादी है, यानी जो मैं जानता हूं वो मेरा शऊर है, जो आप जानती हैं वो आपका शऊर है, तो ये हमारा इनफरादी शऊर, इसको उन्होंने शऊरे चहारम का नाम दिया, चौथे दर्जे का शऊर। अब इस शऊर के मुकाबले इसको समझाने के लिए कहा कि चूंकि शऊर का जोड़ा होगा, हर चीज जोड़ों में है, तो इस शऊर का भी जोड़ा है, तो वो जो हम नहीं जानते वो सारे का सारा लाशऊर हुआ। इन एक फर्द जो नहीं जानता वो उसका लाशऊर कहलाया। अब वो लाशऊर क्या है? वो पूरी नौ का शऊर है, यानी तमाम अफराद जो कुछ जानते हैं वो सारा मिलकर नौ का शऊर कहलाया। इसे शऊरे स्वयं कहा गया, तीसरा शऊर। अब इसका भी एक जोड़ा है। अब इसका जोड़ा क्या है? वो तमाम अनवा, तमाम स्पीशीज के शऊरों के मजमुए को दूसरा शऊर कहा गया, यानी कि वो स्पीशीज का लाशऊर हुआ, या उसको शऊरे दोयम कहा गया। अब ये स्पीशीज का लाशऊर असल में क्या हुआ? वो कायनाती शऊर हुआ। तो कायनात के शऊर को शऊरे दोयम कहा। अब उसका जोड़ा क्या है? कायनात का शऊर जो कायनात जानती है, और जो कायनात अभी नहीं जानती वो जाहिर है कि अल्लाह के जहन में है, तो हम अल्लाह के जहन को गोया शऊर अव्वल कह रहे हैं। अब यहां से बात वाजे हो गई कि शऊर के दो रुख हो गए, एक बेदारी में और एक हालत ख्वाब में, तो इस लिहाज से भी शऊर लाशऊर हो गया। और दूसरा जो आप انفرادی طور پہ جانتی ہیں، یہ انفرادی شعور ہے. جو آپ اجتماعی طور پہ ساری نو جانتی ہے وہ نوئی شعور ہے. پھر اس کے اوپر ایک شعور ہے جس کو کائناتی شعور کہتے ہیں، اور پھر اس کے بھی اوپر ایک شعور ہے جس کا نام اللہ کا ذہن ہے. تو اب بات واضح ہو گئی آپ کو کہ شعور، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی جب ذہن کے دو درجے نہیں ہیں، یہ ذہن کے شعور جو ہے وہ اصل میں ذہن دو طرح سے کام کرتا ہے، ایک وہ انفرادی سطح پہ، ایک اجتماعی سطح پہ. واضح ہو گئی بات؟ چل شکر الحمدللہ.
جی سر، ایک اور کوشچن ہے.
ارشاد
سر، ہم ہر ایموشن کو اوور طریقے سے کرتے ہیں، اگر چاہے وہ خوشی ہو یا پریشانی ہو یا غم ہو، ہم اسے ایکسپریس بہت زیادہ اوور کرتے ہیں. تو ہمارے اس مزاج میں ایک ٹھہراؤ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟
بہت آسان ہے، جب آپ ایک لفظ کو ایک لفظ کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تخسر فی المیزان، میزان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. کیا؟ میزان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا، ڈسٹرب نہیں کرنا. میزان کسے کہتے ہیں؟ بیلنس کو. بیلنس کو جب آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیلنس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں چیزوں کو آپ نے طریقے سے، سلیقے سے ان کی حدوں میں استعمال کرنا ہے. ہاں یا نہیں؟ اب اگر دیکھیں کوئی بھی ایموشن اوور رائڈ کرے گا، آپ نے خود کہا اوور ڈو کرنا، اوور رائڈ کرنا، تو اوور نہیں ہونے دینا نا اس کو، اتنا ہی کریں جتنا اس کو ضروری ہو. خوشی کا آپ کو پورا ادھیکار ہے لیکن اوور ڈوئنگ کا اختیار نہیں ہے. اسی طرح غم کو بھی آپ محسوس کریں گے لیکن غم کو ضرورت سے زیادہ محسوس کرنا اوور ڈوئنگ ہو گیا. تو یہ اوور ڈوئنگ کو جب آپ کی نظر رہے گی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بیلنس کا، تو آپ بیلنسنگ، بیلنس ہو کے چلتے رہیں گے تو کوئی اوور ڈوئنگ نہیں ہوگی. ہر چیز میں توازن، اعتدال ہوگا تو اس میں حسن پیدا ہوگا. اس میں حسن پیدا ہوگا تو آپ محسن بن گئے، اور اللہ محسنوں کو پیار کرتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ دو باتیں واضح ہوں گی تو آپ کبھی بھی اوور ڈو نہیں کریں گے.
جی
دیکھیں نا، اگر کوئی ایکٹر اوور ایکٹنگ کرے تو اچھا لگتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہو تو اچھا لگ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو اسی طرح کسی بھی سچویشن کو اوور ایکٹ نہیں کرنا. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ری ایکٹ تو بالکل ہی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ رسپونڈ کرنا ہے. تو جب آپ رسپونسو ہو گئے تو رسپونسبل بھی تو ہو گئے نا. تھینک یو،
تھینک یو سو مچ سر.
ویلکم. جی وعلیکم السلام.
ہیلو.
جی وعلیکم السلام
سر، یہ میرا بھی.
جی جی
سر، تذکرہ قلندر باب بولیا میں سجدات سے بھی ہے.
جی
یہ جب کنکر تہ میں پہنچا تو پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، بشرطے یہ کہ پانی کی وسعت اتنی ہو کہ وہ باطن کا مظاہرہ کر سکے.
جی ہاں
استاد، سوال یہ ہے کہ یہاں पानी की बर्फ से भी उनके दिल में का इजाफा हमारे अंदर तमाम साबित होता है। पर ये मेरा सवाल है,
मैं आपको इसकी पहले मिसाल अर्ज कर देता हूँ, एक पहले छोटी सी मिसाल समझ लें बात को। ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने कुछ शरायत बताई हैं, शरायत में से एक शर्त ये है कि अब आप एक नाली में, छोटी सी पतली सी नाली में ईंट फेंकेंगे तो क्या होगा, लहरें उठेंगी कि छींटे उड़ेंगे? अगर हम हालात और वाकयात में तमीज ना कर सकें और ये ना देख सकें कि भी आगे पानी कितना है, तो पहले आपको आगे हालात और वाकयात का जायजा लेना जरूरी है, ये समझ आना जरूरी है। अब मिसाल की बात है कि आप अगर छोटी सी नाली में पतली, मतलब कोई बंदा बाल्टी भर के पानी बहा रहा है तो आप उसमें पूरी एक ईंट मारें तो वहां लहरें तो नहीं उठेंगी, वहां तो छींटे उड़ेंगे, क्योंकि पानी की वसत इतनी नहीं है कि वो ईंट का बर्दाश्त कर सके। तो हालात और वाकयात को देखते हुए तय करेंगे ना।
सही हो गया
जी,
जी सर ऐसा ही।
जी मजीद जी, मजीद कोई बात,
मतलब किसी भी इरादे का जल्जम मानिया तो वकानियत में कदम और दरअसल कंकर या इरादे का तमस्सुल, तो ये
आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, ये आखिरी जुमला दोबारा फरमा दें।
सर ये था कि कल फेरा दरअसल कंकर यानी इरादे का मसल, यानी मैं ये पूछना चाहती कि ये किसको भी कह सकते हैं, ये पूछने का मकसद था।
किसको?
सर जैसे ये कंकर इरादे की जगह या मुकाम रखता है तो उसको फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं, मेरे पूछने का ये मकसद।
जी हाँ, फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। फोकल पॉइंट यानी के आपकी तवज्जो पूरी तरह उस चीज को समझे तो सही कि आप चाह क्या रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं उसको पूरी तरह समझना तो फोकस होगा तो क्लियर होगी ना बात।
ठीक हो गया, बिल्कुल। सर एक और सवाल था मेरा, बातें मेरे मुराद की से
इरशाद
कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह इस बात की तरफ तवज्जो फरमाई कि अल्लाह किसी को दोजख में नहीं डालेंगे, कहेंगे अच्छा जाओ हटो यहाँ से और जितनी जन्नत की तरफ और जन्नती जन्नत की तरफ और दोस्ती दोस्त का इंतखाब करेंगे
जी,
और वहाँ दोस्ती चीखों पुकार करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और मखलूक की तकलीफ का सुनकर अल्लाह ताला जहन्नुम को ठंडा होने का हुक्म देंगे
जी।
और आग सर्द पड़ जाएगी। सर इससे मुराद क्या, यानी कि फिर हम लोगों को
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जहन्नम का मतलब है पछतावा, ठीक है,
हो गया जी बिल्कुल।
अब सूरत हाल ये है कि जन्नत में जो लोग जाएंगे वो अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा बन गए,
बिल्कुल जी,
और जो जहन्नम में गए वो तकलीफ में है। क्या कहा? तकलीफ का सुनकर। अब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी तो क्या हुआ, अल्लाह मियां जहन्नम को डिलीट कर देंगे। जब वो डिलीट हो गया तो उनकी तकलीफें भी डिलीट हो गई, वो सिस्टम से भी आउट हो गए। खत्म हो गया अल्लाह ने जब अपना, देखें यहाँ पे क्या है कि वो तकलीफ खत्म करनी है, हैं?
जी सर।
मखलूक की तकलीफ अल्लाह को पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, वो सिस्टम से डिलीट हो गए ना,
वो सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया सर।
कितना सिंपल बात है, जो लोग जन्नत में गए वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को चलाने में लग गए।
जी बिल्कुल लग गए, हाँ जी।
अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए, बाकी रह गया कचरा, ठीक है उसे जला दिया, किसा खत्म।
सर एक सवाल और कर सकती हूँ?
जी जी जरूर जरूर। नहीं मेरे इलम में नहीं है, क्योंकि अभी मैं जन्नत के काबिल नहीं हुआ, लिहाजा अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले जन्नत तक पहुंचने की काविश करें। देखें ये सारी बातें फालतू की हैं। अब मैं आपको तकवीन के ओहदे गिनवाना शुरू कर दूं कि जी ये फलां जन्नत में फलां दर्जे का बंदा होगा, तो वो बात पेचीदा हो जाएगी। पहले तो हमें दुनिया की इस किलकिल से निजात पा के अपने आप को जन्नत में ले जाना है
इंशाल्लाह। जी सर,
पहले आप ISSB का इम्तिहान क्लियर कर लें, फिर अगले मराहिल जो है ना अगली ट्रेनिंग के बाद में होगी।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ये सवाल हो गए, थैंक यू,
वेलकम। जी
अस्सलाम
वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम
सर। मेरा क्वेश्चन उसी मुस्तफा इरशादात में से, सूफी का कहन तो एक होता है कि वो तवक्कुल करके जो इरादा करता है वो मजहर की शक्ल सूरत में जाहिर हो जाता, लेकिन अगर हम भी वही सूफी का जहन हासिल करना चाहें तो ये हमारे लिए किस तरह मुमकिन होगा?
बड़ा आसान है, आप भी सूफी बन जाए। देखें सूफी कहते किसे हैं? सूफी कहते हैं वाइज आदमी को, विजडम रखने वाले बंदे को, अहले दानिश को, ठीक है
जी सर।
ये लव सूफी से है ना, जिसे फिलोसॉफी, फिलोसफी जिसे आप कहते हैं
सर।
उसका दूसरा जुज जो है फिलोसॉफी, सूफी मैंने दानिश। अब दानिशमंदी में सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, वो आगे देखना सीख लेता है, उसे पता है कि मैं इस जुमले का क्या नतीजा निकलेगा तो इसके बाद क्या होगा, वो अपने किए के नताइज को देखना सीख जाता है, तो इसको दानिश कहते हैं। दानिशमंदी क्या हुई कि आपको नजर तो आए कि अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आपको इतनी भी फहम नहीं है तो आप दानिशमंद थोड़े ही हुए?
नहीं हुए सर, बिल्कुल नहीं हुए।
तो आगे देखने वाले बंदे को सूफी कहते हैं। अब वो आगे कितना आगे, वो गैब में भी देखता है, यानी अभी जो चीज सामने नहीं आई उसने उसको भी तो असेस कर लिया ना, उसको तोल लिया, उसको देख लिया, उसके मुताबिक उसने बात की। आप आहा, बस इतनी सी बात है। अब इसको मैं जितना चाहे पेचीदा करके सुनाता रहता हूँ कि भाई वो गैब देख सकता है तो वो ये कर सकता है, भाई नतीजे देख सकता है, उसे पता है मैं जो बात कह रहा हूँ उसका क्या नतीजा निकलेगा, और वो उस नतीजे को कंट्रोल करना जानता है।
ओके, सही हो गया सर, ठीक हो गया।
सही हो गया सर।
थैंक यू, अगर सही हो गया तो बहुत शुक्रिया।
जी सर। सर एक और सवाल है।
इरशाद।
ये सांस मस्त करते जहन में आया सवाल सर कि आलम नासूस में जब हम सांस ले रहे हैं तो हयात का कायम सांस पर हो गया, लेकिन बाद अज मौत क्योंकि हयात है तो फिर उस हयात का कायम किस पर होगा सर?
जाहिर है कि वो आपके दिमाग में जो बरकी रोएं चल रही हैं, जिनको बरकरार रखने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो उन बरकी इरताशात पे चल रहा होगा ना, जहन जो है वहाँ पे बरकी इरताशात, वरना देखे बंदा मर जाता है तो हवा तो मौजूद होती है,
बिल्कुल होती है सर।
तो फिर वो किस पे जिंदा है उस? अब यही तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अल हय्यल कय्यूम, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यल कय्यूम, उसकी हयात को ये मादी वसाइल के बगैर भी कयाम है। तो वो क्या हुआ? वो लहर ही हुई ना।
बिल्कुल हुई सर।
अब करंट भी लहर है
जी सर,
और वो जो चीजें करंट बना रही हैं वो भी लहर है। अब उन्हीं को नूर कहा, उन्हीं को तजल्ली कहा, उन्हीं को सिफात कहा, उसी को जात कहा। जात क्या है? एक हरकत है। बस ये हरकत का कयाम तो यहाँ पे भी रहेगा, वहां पे भी रहेगा। यहाँ पे वो मादी लंग्स के साथ आपकी जिंदगी को बरकरार रखे हुए है, तो वहां ऊपर जाहिर है कि जिस्म में इन चीजों की जरूरत नहीं होगी तो क्या जरूरत है। लेकिन जब आप वहां खाना खाएंगे तो जाहिर है सांस भी लेंगे लेकिन वो लताफत होगी उसको। वहां खाना भी रोशनियों का बना हुआ होगा तो ये हवा भी तो ऐसे ही होगी ना, नूरानी सी।
ओके सर, ठीक हो गया सर, सही हो गया सर। सर एक सवाल और कर लो।
इरशाद।
सर ये बातें मेरे मुराद की में से एक जुमला है, गुस्सा करना अल्लाह पर एतराज के मुतरादिफ है।
बिल्कुल ठीक।
किबर ये सब खानदानी रिवायात है
जी।
सर इसको थोड़ा सा
देखे ना, गुस्सा आप कब करते हैं? गुस्सा कब आता है?
हाँ।
कब आता है? जब कोई चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हो।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर।
अब एक काम मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड है और आप गुस्सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह पे एतराज ही तो कर रहे हैं।
बिल्कुल एतराज ही तो हो गया ये।
हाँ ये मुख्तलिफ पैरायों में ये बात हजूर मुर्शिद करीम ने समझाई कि गुस्सा करना कितना बुरा है। ये अनानियत की तरफ ले जाता है, ये तकबर की तरफ ले जाता है, और यही हमारी खानदानी रिवायात बनी हुई है। हम अपने खानदान की रिवायात को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो नहीं करते।
बिल्कुल ऐसा ही है सर, ठीक हो गया सर।
वाज़े हो गई बात?
बिल्कुल वाज़े हो गई सर।
अब अगर आपको गुस्सा आए तो आप इससे जरा सा सोचें कि भाई अल्लाह को तो गुस्सा आता नहीं है, अगर मैं अल्लाह को फॉलो कर रहा हूँ तो या कर रही हूँ तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो आप जब उसका तजिया करेंगे तो आप देखेंगे कि ये खानदानी रिवायात का तसलसल है। मसलन एक बच्चे ने बदतमीजी की, बच्चे ने बदतमीजी की, अब बच्चे की बदतमीजी को रोकने के लिए आपने गुस्से का इजहार किया, ठीक हो गया। अब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने जब उसके छोटे ने बदतमीजी की तो उसने उस पर गुस्सा किया, तो ये क्या हुआ? खानदानी रिवायत ना बन गई?
रिवायत बन गई, बिल्कुल सही हो गया सर, सही हो गया सर।
वाजे हो गई बात? अब अगर बच्चा
जी जी बिल्कुल वाजे हो गई सर।
अगर बच्चे की बदतमीजी को आप अपनी तरबियत का सुकम समझें और इस तरफ जुट जाएं कि इसको मैं कहां पे नाकाम हुई कि इसने ऐसी बदतमीजी की, बजाय गुस्सा करने के, बजाय बुरा मनाने के, आप अपनी तरबियत का जायजा लेने बैठ जाएं और उसके साथ उसकी इस्लाह कर दें कि बेटे तुमने ये एक तरीका है, तमीज है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमने माँ के सामने बाप के सामने उफ नहीं कहनी। तो तुम जब उफ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम माँ पे एतराज कर रहे हो, तो तुम कल को अल्लाह पे भी एतराज करोगे। यानी पूरी उसकी सोच की न्यू टेढ़ी हो गई ना। अब बजाय गुस्सा करने के आपने उसको इस तरह दलाइल से कॉर्नर करना शुरू कर दिया। और दलाइल का अंबार लगाते चले गए।
हाँ।
तो क्या हुआ, आप दानिशमंद हुए के ना हुए?
जी सर। जी सर।
बस दानिशमंदी का तकाजा ये कि आपके पास बच्चे से ज्यादा दलाइल होने चाहिए।
हाँ,
ये क्या बात हुई कि बच्चे के सामने आपकी बोलती बंद हो जाए? आप बड़े थोड़े ही हुए, आप बच्चे की शागिर्दी इख्तियार कर लें।
सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही है।
हाँ, मतलब ये कि देखे ना, हमारे यहाँ क्या है कि टीचर जो है वो प्राइमरी का टीचर, वो बच्चा मिडिल में पहुंचता है तो वो प्राइमरी के टीचर की इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि टीचर ने अपने आप को ग्रो ही नहीं किया, बच्चा ग्रो कर गया। अब वो टीचर की क्या इज्जत करेगा जब वो मैट्रिक में चला गया, तो वो देखेगा टीचर भी मैट्रिक था, मैं भी मैट्रिक कर गया हूँ, मैं इंटर कर लिया, मेरा टीचर वही मैट्रिक में ही है, मैट्रिक ही किया हुआ, वही अलग पे पढ़ा रहा है बच्चों को। तो वो उसकी उसके मुकाबले में उसने ग्रोथ नहीं की। तो इसमें किसका कसूर हुआ, किसका कसूर हुआ? अब माँ ने बच्चा जना। हाँ, इसी तरह माँ बच्चे के शऊर को तो ग्रोथ दे रही है और खुद अपनी ग्रोथ नहीं कर रही, तो कसूर किसका हुआ?
माँ का ही हुआ सर।
अब माँ वहीं रुकी रहे। देखे ना, चंद बातें बुनियादी हैं, उनको उनसे आप हट नहीं सकते। मसलन माँ को एहसास है कि मैं मखलूक हूँ, वो ये एहसास औलाद में मुंतकिल करते। लेकिन अगर बच्चे का शऊर दुनियावी अलूम के चक्कर में ग्रो कर रहा है तो माँ को बेसिक तो आनी चाहिए ना।
जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए।
वो जैसे मैंने आपको एक बात सुनाई थी कि एक बच्चे ने माँ से पूछा, मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ, दुनियावी अलूम तो जो बताते थे उसने उसके मुताबिक का खिदमत करके। तो माँ ने झटका दिया उसको कि तुम मेरी क्या खिदमत कर सकते हो। तो माँ के शऊर ने बच्चे को लाजवाब कर दिया, क्योंकि माँ का शऊर दुनियावी अलूम से ऊपर का था।
ऊपर का था, बेशक ऊपर ही का।
तो अपने शऊर को आपको दोनों तरह से डेवलप करना है, ठीक है ना? भले दुनियावी अलूम में पीछे रह जाएं, लेकिन जो रूहानी शऊर है उसको तो अपना मेंटेन करो ना।
बिल्कुल सही हो गया सर।
अब वाजे हो गई बात?
बिल्कुल वाजे हो गई सर।
जी,
थैंक यू सो मच सर।
वेलकम। और कोई? इरशाद,
मेरी लॉ कलम से संबंधित आँख की बेलों का मतलब उसकी हरकत रुक जाए।
जी जी,
हमारे पिक्चर लगी थी किसी चीज की, तो चीज की हकीकत हमारे सामने आने लगती है।
जी हाँ,
किसी चीज की ये चीज सर, अगर हम अभी इसके अंदर जो कहते हैं, हम राग्बा मुर्शिद जो कहते हैं समरिशेप, उसके अंदर भी हम यही चीज कर रहे होते हैं।
जी जी,
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे।
जी, बेसिकली ये जो डेलों की हरकत को रोकना है ना,
जी सर,
इससे होता ये है कि आपकी कुव्वत इरादी बढ़ती है, आपके इरादे की ताकत की एक मशक है। क्या कि मेरे आंख के डेले ना हिले, आंख पलक ना झपके, जब आप किसी नुक्ते पे नजर टिका के बैठ जाएं और ना डेला हिले, ना फोकस बदले, ना पलक झपके, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कुव्वत इरादी काम लानी पड़ेगी, कुव्वत इरादी से काम लेना होगा। ठीक हो गया? ये मशकें कुव्वत इरादी को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। जब कुव्वत इरादी से काम लेते हुए आप इतने काबिल हो जाएं कि आपको अपने डेलों की हरकत पे कंट्रोल हासिल हो जाए, तो इरादे की ताकत से आप चीजों के मानवी खदोखाल देखना सीख जाएंगे। ये कानून बताया हजूर पुरंदर बाबा बोलिया ने।
सर मानवी खदोखाल क्या चीज है, ये चीज ही मैं समझना चाह रही थी।
अब मैं आपके सामने कहता हूँ प्यास लगी है, तो आपके जहन में लफ्ज प्यास आता है, पे ये अलिफ सीन आता है?
नहीं, पानी आता है।
पानी नहीं आता, आपको पानी की तलब का ख्याल आता है, ये उसके मानी आते हैं, हाँ या नहीं? जब आप कहते हैं, बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है, तो आपके जहन में बे हे से बनी भे, भे वाओ काफ, भूख आता है या कि खाने की तलब का ख्याल आता है?
खाने की तलब का ख्याल आता है।
हा हा हा, यहाँ तो आप बड़े सियाणे हैं, हैं? और जब अल्लाह बोला जाता है तो आपके जहन में कोई तस्वीर नहीं आती, अलिफ लाम लाम हे आता है। हाँ या नहीं?
ऐसा ही है सर, हमें उसका ख्याल जो है ना वो चीज नहीं आ रही।
लिहाजा अब क्लियर होगी बात कि जब आप मुराकबा कर रहे हैं, देखे ना स्याह नुक्ते का मुराकबा, अब जब तसव्वुर शेख करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि मैं मुर्शद हूं, यानी आप खुद को बनफ्स नफीस मुर्शद करीम के रूप में देखेंगे या उनकी नकल करेंगे। उससे क्या होगा, उससे उनकी तर्ज फिक्र मुंतकिल होगी रफ्ता रफ्ता। जब आप उनकी तर्ज फिक्र से आशना होंगे तो फिर आपको उनका जहन मुंतकिल होगा, उनका जहन आपके अंदर फिट होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, फिर उनकी सलाहियतें मुंतकिल होंगी, फिर उनके अलूम मुंतकिल होंगे। ठीक है, ये फायदा है तसव्वुर शेख के मुराकबे का, वो एक अलग बात है। अब जो हजूर कलंदर बाबा बोलिया ने कहा कि डेले की हरकत नहीं हिलनी, डेले को हरकत नहीं करनी चाहिए या डेला नहीं हिलना चाहिए, पलक नहीं झपकनी चाहिए, तो वो असल में कुव्वत इरादी का इस्तेमाल बता रहे हैं कि जब आपके इरादे की ताकत में दम पैदा हो जाएगा। इरादे की ताकत को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसी किस्म की मशकें कर करके किया जाता है ना, कहीं सांस रोक लिया, अब सांस रोकना क्या है? है, सांस को अपनी मर्जी से स्लो आहिस्ता आहिस्ता लें, ये क्या है, सब कुव्वत इरादी का इस्तेमाल है। आप कहते हैं मैंने 4 बजे उठना है और घड़ी का अलार्म नहीं लगाते और ठीक आंख खुलती आप देखते हैं तो 4 बजे, क्या मतलब कि आपकी विल पावर अब इस दर्जे पे आ गई है। ये मशकें जो हैं ये आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए, ताकि आप इरादे की तकरार करके उसमें और दम पैदा कर सकें। तो ये बताया कि जब इरादे की ताकत मतवस्त रफ्तार से काम करती रहती है, मतवस्त रफ्तार से, यानी ऐसे एवरेज, ये नहीं कि जोर ज्यादा लगा दें। इसलिए कि प्रैक्टिस नहीं होती ना, देखें पहले कुव्वत इरादी को डेवलप करेंगे ना हम। अलिफ को छोड़ के एकदम ये का सबक पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हम में जल्दबाजी बहुत है ना। अभी कुव्वत इरादी से आप वाकिफ ही नहीं हुए, चले हैं कुव्वत इरादी से काम लेने। मैं आपको एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ, देखिए फर्ज करें आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, आप को कोच कहता है कि 5 मील दौड़ लगाओ, आप कहते हैं ये अजीब बेवकूफ आदमी है, मैंने कहा है कि मुझे मुक्का मारना सिखाओ, ये कहता है 5 मील दौड़ो, तो आपको नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि वो आपका स्टेमिना बढ़ा रहा है, उसे पता है कि स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, वो पहले आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, फिर आपकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाएगा, फिर मुक्का मारना सिखाएगा, फिर बताएगा कि कंधे की ताकत को इस्तेमाल करके मुक्का कैसे मारा जाता है, किस तरह से आपने अपने पैरों पे उछलते रहना है और अगले के निशाने पे नहीं आना, वरना अगला मुक्का मार के आपको नॉकआउट कर देगा। वो पहले आपको नॉकआउट होने से बचाने के गुर सिखाएगा, फिर मुक्का मारना सिखाएगा। क्लियर हो गई ये मिसाल? अब जब हम रूहानियत सीखने आते हैं तो हम यहाँ पे आते ही कहते हैं हमें रिंग में उतार दो और बताओ मुक्का कैसे मारना है। वो कहता है जाओ भाई पहले निकलो रिंग से, जाके 5 मील डेली दौड़ा करो, जब स्टेमिना बन जाएगा फिर अगली बात सिखाऊंगा। ये बात अब समझ आई कि क्यों ये शर्त लगाई गई है कि मुर्शिद की बात को बिला चूं चरा माने। अब वाजे हो गई
सबसे पहले नीली रोशनी का मराकबा कराया जाता है
जी,
सिलसिले में शामिल होने से पहले, तो उसमें बहुत सारी वारदात आ रही होती है, कैफियात आ रही होती है, लेकिन जैसे ही सिलसिले में शामिल होते हैं
आप चूंकि तस्वर शेख सही तरह नहीं कर रहे, लिहाजा ये कैफियत ये दुश्वारी सामने आ जाती है। आप बजाय तस्वर शेख करने के आप तस्वीर कशी करने बैठ जाते हैं, और वो तस्वीर कशी जो है वो तस्वीर कुशी ज्यादा बन जाती है।
अब तो सर वो कह रहे हैं कि मैं
अब्बा हूँ, बस यही सबसे अच्छा तरीका है, इसका ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। देखें पहली बात यह कि हम सारे देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो देखना बंद कर देते हैं, जब आप बैत हो जाते हैं तो वो जो तसर्रफ वो जो कंट्रोल मुर्शिद को अता है, जो आप खुद उनको एक्सेप्ट करते हैं कि जी आप मेरे टीचर हैं, तो वो कुछ हालात को कंट्रोल करता है, कुछ आपके जेहन को कंट्रोल करता है, तो वो ये देखने की तरफ से ध्यान हटा देना होता है। ये देखने के चक्कर में पढ़ने वाले लोग कभी कहीं नहीं पहुंचे, वो रास्ते के मनाजर में खो जाते हैं और खोते बन जाते हैं। भाई खो गए तो क्या हुए,
मंजिल नहीं होते
भाई, मंजिल तक देखें। हजूर मुर्शिदे करीम ने ये बात फरमाई कि जौकी शाह साहब का एक जुमला उन्होंने फरमाया, कहने लगे कि मुर्शिदे कामिल वो है जो मुरीद को मंजिल तक पहुंचा दे और रास्ते में देखने कुछ ना दे, देखने तब दे जब वक्त आ जाए। क्या मतलब? ये जो आप कह रहे हैं ना कि नीली रोशनी में मुझे ये भी दिखता था तो वो भी दिखता था तो बंद हो गया, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है, आपको अपने मुर्शिद का जहन हासिल करना है, उनकी तर्ज फिक्र हासिल करनी है, उनकी अलूम को हासिल करना है, उनकी सलाहियतों को हासिल करना है। ये टारगेट क्यों नहीं है हमारा? अब जब आपका टारगेट होगा कुछ देखना, तो जाहिर है कि आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, वहाँ जो मकसद है वो जो चाहते हैं, वो जो आपके साथ जोर आजमाई हो रही है कि भाई आपके अंदर मुर्शद की तर्ज फिक्र मुंतकिल हो, उनका जहन मुंतकिल हो, उनकी सलाहियतें मुंतकिल हों और उनका इल्म मुंतकिल हो, जब ये चार दर्जे पूरे कर लेंगे तो फिर जाके कहेंगे, फिर कहते हुए अच्छे भी लगेंगे कि जी हमें कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ सूफी कहते ही उसे हैं जो आगे देख सकता है, तो आप आगे देखें, आप चीजों को ना देखें, मंजिल पे रास्ते जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे आगे देखें। अब वाजे हो गई बात
जी सर?
जी जनाब, और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
आदमी को इस वजह से अदा किए गए हैं कि आदमी अपने इंफरादी शोर के साथ कदम कदम चलता हुआ इस हकीकत से हमकनार हो जाए जो हकीकत इस इंफरादी शोर की खाली है। अगर इंफरादी शोर ना होता तो सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह होता। तो सर इसकी क्या मराठे इंफरादी शोर ना होता तो सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह।
देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि सारी चीजें जोड़ों में तख्लीक हुई है ना, ये फना और बका ये सब क्या जोड़े हैं। अगर ये चीजें खत्म हो जाएं तो यहाँ क्या था, तख्लीक ही ना होती। जब तख्लीक ना होती तो अल्लाह ही अल्लाह था ना। अल्लाह ताला को बतौर खालिक कोई एक्नॉलेज ही ना करता। जब अल्लाह ने कोई तख्लीक की तो अल्लाह खालिक कहलाया। अगर अल्लाह तख्लीक ना करता तो अल्लाह ही अल्लाह था ना जी। वाज़े हो गई बात? देखे ना, अगर अल्लाह रब्बे करीम अपनी सिफात का इजहार करने को कायनात तख्लीक ना करता तो कायनाती शऊर बनता
नहीं।
अगर कायनात में अनवा ना तख्लीक करता तो क्या नोई शऊर बनता? अब नौए जो हैं वो आगे अपने अफराद प्रोड्यूस ना करती तो इनफरादी शऊर कहां से बन जाता? अब क्लियर हो गई? ये अभी बात कही ना कि चार शऊर हैं तो इनफरादी शऊर, तो इनफरादी शऊर का शाखसाना जाके मिलता है अल्लाह के जहन से। हमें दर्जा ब दर्जा ये चारों शऊरों को कवर करना है, वरना अल्लाह ही अल्लाह था, यहाँ क्या होता, कुछ भी ना होता। जब कुछ ना था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह ही होगा। तो अल्लाह तो एक परमानेंट हस्ती है ना। ये अल्लाह रब्बे करीम ने एक निज़ाम वज़ा किया है अपनी सिफात के तारुफ के लिए, अपनी ज़ात के तारुफ के लिए। अब जो उसकी ज़ात और सिफात को समझ लेता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, उसके अंदर अल्लाह की सिफात काम करती हैं। ठीक हो गया?
ठीक हो गया सर। एक और सवाल है श्री अलग से। अजीम साइंसदान अल्लाह ने हमें गोता नजर नहीं बनाया, हम जब गोता नजरी से मुंह मोड़कर बसीरत से काम लेते हैं तो हमें ये देखकर हैरत होती है कि जमीन पर ही नहीं पूरी कायनात में, कलाम में, आसमानों में, अर्श में, बैतुल मामूर में, सिदरतुल मुंतहा के इस तरफ और सिदरतुल मुंतहा के उस तरफ कोई चीज बेरंग नजर नहीं आती। ये रंग रंग दुनिया, रंग रंग कायनात के कारण हम वक्त सबर करते हैं।
बराए बे रंग में भी तो रंग है ना। देखें, रंग से मुराद है लहर। ये सारा निजाम लहरों पे। अब वो लहरों के हमने नाम रखे हुए हैं, किसी को हम रंग कहते हैं, किसी को यक रंग कहते हैं, किसी को बेरंग कहते हैं। हाँ या नहीं? तो यहाँ पे मुर्शिद करीम का इशारा इसी तरफ है कि सिदरतुल मुंतहा के इस तरफ या उस तरफ, सब कुछ रंग ही रंग है। अब मतलब है लहर, یہ سب لہروں کا نظام ہے. بعض لہریں زیادہ لطیف ہیں, بعض زیادہ کثیف ہیں, بس. نہیں, مخفی نور, نور کسے کہتے ہیں؟ شاباش, تو مخفی کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا. وہ جو الفاظ کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا خیال ہے, اس کو ریڈ کرنا ہے آپ نے.
ہاں, تو ہم کس طرح کریں گے؟
میں نے جو اس کے ٹپس عرض کیے ہیں, وہ ٹپ یہ ہے کہ بھی آپ مادے کو پکڑیں, لفظوں کے مادے کو پکڑیں, تو اس کی مدد سے زور فوکس کریں. جب آپ کا ذہن فوکس ہوگا تو پھر اللہ رب کریم اپنے مفاہیم آپ کے ذہن میں خود منتقل کریں گے, کیونکہ یہ وحی ہے, یہ وحی کے الفاظ ہیں, اور وحی کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے, کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا. یہ جو ہم پڑھے ہوئے نا کہ کوئی سمجھا دے, بس یہی غلط ہے. ہم جب تک اس طرف نہیں آئیں گے کہ نہیں بھائی مجھے خود سمجھنا ہے, کیونکہ اللہ رب کریم نے ایک انتظام کے تحت اپنے محبوب ترین بندے کی ڈیوٹی لگائی, پہلے ان کو وحی کیا, ان پہ وحی ہوئی. جب ان پہ وحی کی, انہوں نے کیا کمال کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس وحی کو ریکارڈ کر دیا. اب وہ وحی مجھے اور آپ تک آئی, اب اللہ کی تو کوئی زبان نہیں ہے. تو جب ہم, آپ غور کریں کہ ہر زبان 100-150 سال میں بدل جاتی ہے. آج سے 100 سال پرانی آپ اردو سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. عربی کو 1400 سال ہو گئے, وہ نہیں بدلی, کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے اس زبان کو یہ شرف عطا کر دیا کہ وہ سارے زمانوں کے لیے باقی ہو گئی, اس کو بقا مل گئی, یہ قرآن کا اعجاز ہو گیا. تو گویا جب آپ کسی لفظ کو پکڑتے ہیں اور اس کو پہلے عام جو بھی ترجمہ ہے اس کو پکڑیں اور پھر اس پہ خود غور کریں, تو آپ کو یہ بات سامنے آتی چلی جائے گی. مثلا آپ سورہ بقرہ پڑھنے بیٹھے, الف لام میم, آپ نے کہا اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب حضور قلندر باب اولیاء نے فرما دیا کہ بھی نہیں, الف لام میم خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کو کہتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیسے اخذ کیا, یہ وہ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم نے مان لیا. آگے لفظ ہے ذالکا, ذالکا کہتے ہیں اسے, وہ, الف لام میم وہ سانچا ہے. ذالک الکتاب, کتاب کا مطلب ہم صفحے والی کتاب لیتے رہے تو مطلب نہیں واضح ہوگا, لیکن اگر ہم اس کو ایک سانچا مان لیں کہ الف لام میم وہ سانچا ہے, لا ریب فی, ریب کہتے ہیں ریب سے, لفظ ریب آپ نے سنا ہوا ہے, تو ریب کہتے ہیں ترچھے پن کو, ٹیڑھے پن کو, کہ الف لام میم وہ سانچا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں ہے. اب یہ ایک آیت آپ کو کلیئر ہو گئی؟ کیسے ہوئی؟ کہ میں نے, آپ نے زور لگایا کہ یہ الف لام میم کیا ہے, ڈھونڈا 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 کرتے کراتے حضور قلندر باب اولیاء کی کتاب تک پہنچے, وہاں سے پتا چلا کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے. پھر عربی میں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ کتاب, یہ ہے یا وہ ہے, یہ ذالکہ کا ترجمہ وہ, ہاں یا نہیں؟ ہاذا کہتے ہیں اسے اور ذالکہ کہتے ہیں اسے. تو جب آپ اس طرح سے خود غور کریں گے تو اب یہ مطلب, یہ ترجمہ آپ نے کہیں کسی قرآن میں نہیں پڑھا. किसी तर्जमे में नहीं पढ़ा, हाँ या नहीं? ये वो बात है कि आप खुद गौर करेंगे तो इस तरह अल्लाह रब्बे करीम खुद समझा देगा। अब आप चाहें कि जी मैं गौर ना करूं, हैं? कोई मुझे बता दे। हजूर मुर्शिदे करीम से लोगों ने कहा जी आप कुरान की कोई रूहानी तफसीर लिख दे ताकि हमें आसानी हो जाए। अब मैंने कहा भाई मैं तुम्हें इस काबिल बना रहा हूं कि तुम खुद गौर करके अल्लाह की बात को समझो, तुम कहते हो कि आप बताएं। अब वो 100 किताबें लिख दी तो कितनों को समझ आ गया?
नहीं।
कहने की बात है 100 किताबें, सैकड़ों तकरीरें, किताबचे अलग, इतना कुछ लिख दिया, किसको समझ आई कि बुनियादी बात क्या है? भाई आप मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप पढ़े जा रहे हैं, 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 पढ़ पढ़ के इलम दीन बन गया। बात को समझना असल चीज है या सिर्फ पढ़ना? तो लिहाजा आप अपनी तवज्जो को और ध्यान को इधर ले जाएं कि हमने बात को समझना है और वो हमने खुद समझना है, कोई हमें नहीं समझा सकता। समझने में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि जो बात मुझे समझ आई है वो मैं आपसे शेयर करूं, जो आपको समझ आई है वो आप शेयर करें, हाँ या नहीं? इसीलिए मैं हमेशा ये अर्ज करता हूँ कि मैं कोई बात समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपके साथ अपनी फहम शेयर कर रहा हूँ, आप उसकी रोशनी में खुद गौर करें। हर बार यही अर्ज करता हूँ या नहीं?
नहीं सर।
तो बात वाज़े हो गई? चले काफी है इतना?
जी सर।
चले खुश रहिए और अपना ख्याल। जी क्या कह रही हैं आप?
थैंक यू सो मच सर।
अच्छा अल्लाह हाफिज।
इंशाल्लाह
जी, इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।